आयत नंबर 256 को देखते हैं। ला इकराह फिद्दीन, दीन इस्लाम के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं। यहाँ लिख लीजिए दीन कबूल करने के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं। किसी को गन पॉइंट पे मुसलमान नहीं किया जा सकता। इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है कि किसी को थ्रेट किया जाए, किसी को खौफजदा किया जाए और उसको जान का ख़तरा देकर उसको कहा जाए कि अब तुम कलमा पढ़ लो, ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, क्यों मजबूर नहीं किया जा सकता? इसलिए कि कद तबैना रुश्द मिनल गई, हिदायत गुमराही के मुकाबले में बिल्कुल वाज़े हो गई। हिदायत बिल्कुल वाज़े है, गुमराही बिल्कुल वाज़े है। इसके नीचे लिख लीजिए कि ये कहाँ है, फितरत। आपको पीछे भी कई दफ़ा तस्करा किया ना मैंने कि आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पे हाथ फेरा और दुनिया में पैदा होने वाली सारी रूहों को अल्लाह ने जिंदा कर दिया। फिर उन सब से एक वादा लिया, अलस्तु भी रब्बी को, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? यानी दुनिया में जाओगे तो किसको रब मानोगे? तो अल्लाह ताला के हुक्म से हर रूह ने, जिसमें मैं और आप भी शामिल थे, हमने कहा कि बला क्यों नहीं अल्लाह, हम तुझे ही रब मानेंगे। ये है कद तबैना रुश्द मिनल गई, एक बच्चा पैदा कर दिया जाए, मुसलमान तो मुसलमान, इंसान भी ना उसको कोई मिले और किसी जंगल में जानवरों के बीच में छोड़ दिया जाए, तो उस बच्चे की फितरत बताएगी कद तबैना रुश्द मिनल गई, और वो क्या बताएगी कि ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, पहली बात समझ लीजिए कि अल्लाह ने इस्लाम और अपनी ज़ात की सच्चाई अंदर बांध दी है हर एक के। और इसी तरह कद तबैना रुश्द मिनल गई के और बहुत सारे इजहार हैं। कायनात बोल बोल के बता रही है कि अल्लाह है। इस्लाम के खूबसूरत कवानीन अगर आम कर दिए जाएं तो भी पता चल जाएगा सबको। बस आंखें खुली रखो, दिल में कोई तासुब ना रखो, तो सबको पता है कि अल्लाह कौन है और इस्लाम कौन है। इसलिए आप देखिए कि नबी सल्लम की 23 साल जिंदगी नबूवत वाली, आपने किसी को फोर्स करके मुस्लिम नहीं किया। मुमकिन था, चले किसी और दिन मुमकिन नहीं था, फतेह मक्का वाले दिन मुमकिन था, वे हुक्मरान बन गए, इतनी जंगें जीती और हर जंग के एंड पे कहते पकड़ो इन सबको मुसलमान बनाओ, नहीं, जिजिया देना मंजूर है, उनके हकूक रखे जा रहे हैं, उनके साथ माहदे हो रहे हैं सुलह के, अमन के, मुसलमान करने पे ज़बरदस्ती नहीं की गई। क्यों? इसलिए कि जो इस्लाम जबर के रास्ते आएगा वो इताअत नहीं करने देगा। कोई शख्स ज़बरदस्ती आपके कहने पे कोई काम कर भी लेगा ना, तो उसका दिल कोई नहीं कर रहा होता। मैं तो बिल्कुल भी इस चीज़ की कायल नहीं हूँ कि आप किसी के सर पे खड़े होकर उससे काम कराएं। बड़ा नापसंदीदा लगता है किसी को फोर्स करना कि उठो ये काम कर लो। जब तक आपके अंदर तड़प नहीं आएगी आप वो काम नहीं करेंगे। इसलिए इस्लाम तो मोहब्बत के रास्ते आता है, खुशी के रास्ते आता है। आपका दिल चाह रहा है मैं अपने रब के लिए कुछ करूं, मैं अपने रब की मर्ज़ी मानूं, मैं उसको देखूं, क़यामत के दिन उससे मुलाकात करूं, मैं महरूम ना रहूं। लेकिन सवाल पैदा होता है कि फिर इतने लोग काफिर क्यों हैं? अगर कद तबैना रुश्द मिनल गई है तो लोग फिर कुफर पे क्यों हैं, फिर अल्लाह को क्यों नहीं मानते? तो पहली बात कर लेते हैं, वो फितरत के अहद वाली। फितरत तो सबकी कहती है कि इस्लाम एक है, अल्लाह एक है, लेकिन फितरत पे माहौल का असर छा जाता है। हदीस में आता है हर बच्चा फितरत से इस्लाम पे पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप उसको यहूदी या मजूसी या जो भी नसरानी है बना देते हैं। माहौल का असर होता है नंबर एक, जिसकी वजह से लोग यूज टू हो जाते हैं उस गलत चीज़ के। जिसने शुरू से ही अपने घर में आके किसी बुत को पूछते देखा, उसको एक वक्त आएगा बुरा नहीं लगेगा। जिसने शुरू में शराब के नशे में धुत बाप को देखा, उसको शराब से नफरत नहीं रहेगी। और दूसरी बात है कि कायनात अगर बोल बोल के अल्लाह की मौजूदगी का एहसास दिलाती है, इसकी खूबसूरती, तो आप देखिए कि कोई शख्स अपने आंखों के आगे ग्लासेस लगा ले। मिसाल है, इस वक्त मैं आपको देख रही हूँ अपनी असल आंखों से, आप सब कमोबेश जैसे हैं, मुझे वैसे ही दिख रहे हैं। और अगर मैं अभी यहाँ ग्रीन कलर के ग्लासेस लगा लूँ फिर क्या होगा? मुझे लगेगा अब सब ग्रीन हो गए। ब्लू लगा लूँगी तो ब्लू लगेंगे। जब हम अपनी आंखों पे कोई पर्दा चढ़ा लेते हैं ना, तो समझे कि हम दुनिया का रंग बदल देते हैं। ख्वाहिशात की ग्लासेस, तमन्नाओं की, हुब्बे दुनिया, हुब्बे जाह, हुब्बे माल, हमारी फितरत को मसख कर देती है। अब हुआ क्या, आप इमेजिनेशन में लाएं, एक बच्चा पैदा हुआ, मुसलमान माँ है, काफिर है, हिंदू, यहूदी, नसरानी, नो प्रॉब्लम। आप अमूमन फील करेंगे कि बच्चे मोस्टली एक ही जैसा बिहेव करते हैं, ऐसे ही है। अक्सर मैं ये गोरे बच्चों को जिद्दे करते देखो तो मैं कहती हूँ ये गोरे भी ऐसे ही रोते हैं बच्चे, हमारे बच्चे भी रोए तो बिल्कुल वो सेम रोना, वही टोन, वो यूं तड़प रहे होते हैं, मचलने लगते हैं, फितरत एक है। लेकिन वो चूंकि उस माहौल में गया तो उसको आहिस्ता आहिस्ता वैसी आदत हो गई। आयत का अगला हिस्सा ना, इसका आप टॉपिक लिख लें कि क्यों लोग ला इलाहा इल्लल्लाह पे जम नहीं पाते, क्योंकि रास्ते में कुछ रुकावटें हैं। समझ लीजिए, फिर मैं इंशाल्लाह एक स्ट्रेच में इस आयत को कर देती हूँ। फितरतन हर रूह अल्लाह वाली बनना चाहती है, लेकिन इंसान के रास्ते में कुछ ऐसी हर्डल्स हैं। आप अपनी जुबान में लिख लें कि रुकावट का नाम ताहूत है। हर्डल क्या है? आप अल्लाह की तरफ जाना चाहती हैं, आप अल्लाह की मर्जी वाला बनना चाहती हैं, लेकिन आप बन नहीं पा रही। नतीजा क्या निकला? कि आप अल्लाह की मर्जी को ना मान सकी। मसलन आप देखिए कि अल्लाह के हुक्म से रोकने वाली हर उस चीज को जो बंदे को रब का ना बनने दे, उसको ताहूत कहते हैं। अल्लाह के निजाम और उसके कानून के मुकाबले में कोई अपने निजाम बना ले, वो एक फर्द भी हो सकता है, इदारा भी हो सकता है, हुकूमत भी हो सकती है, कोई बड़ी से बड़ी पावर भी हो सकती है। इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने ये एक तड़प रख दी है। एक नेकी का हुक्म देने वाला फरिश्ता अंदर मौजूद है और एक शैतान है। पहले इससे इस बात समझ लीजिए, अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि हर इंसान के साथ एक फरिश्ता है और एक शैतान है। फरिश्ता उसको नेकी का हुक्म देता है और शैतान उसको गुनाह पे आमादा करता है। दोनों में जंग चलती रहती है, जिसकी बात बंदा मान ले एंड ऑफ द डे उसके साथ दोस्ती हो जाती है। फजर की नमाज से सोच लें, फजर पे फरिश्ता कहता है उठो, अस्सलातु खैरु मिनन नौम, शैतान कहता है भी सो जाओ, रात बड़ी लंबी है। बस सो गए तो सारा दिन शैतान की दोस्ती में आ गए, और शैतान तागूत है। जब फजर नहीं पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे उस दिन आपके अंदर सुस्ती, काहलियत, और आप कहेंगे मैं बीमार हूँ, मैं बीमार। कोई बीमारी नहीं होती, वो नहुसत की बीमारी होती है। नतीजा क्या हुआ कि रुकावट आ गई। इसी तरह कभी मुआशरा होता है, आप नेक बनना चाहते हैं, सोसाइटी आपको बनने नहीं दे रही, खानदान, रिश्तेदार, बिरादरी, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो इस इलाह का बनने से पहले कुछ रुकावटों को दूर करना पड़ेगा। वो क्या? फमई यकफुर बिताहूत, और जो कोई ताहूत का इनकार करे। आप इस वक्त अपनी समझ के लिए आसान करने के लिए लिख लें कि ताहूत दो किस्म के होते हैं, अंदरूनी ताहूत और बैरूनी ताहूत। कुछ वो हैं जो इंसान के अंदर हैं, और अंदर वाला कौन सा? नफ्स। और याद रखिए ये सबसे बड़ा है, जब भी बंदा रब का बनना चाहता है सबसे पहले आपका नफ्स आगे आता है। ओहो ये क्या बात है, तुम किधर चल दिए, ये क्या इस्लाम इस्लाम की बातें कर रहे हो, तौबा करो, निकलो, फंस जाओगे, मुश्किल में आ जाओगे। जब बंदा इस रुकावट पे काबू पा ले, मिसाल देती हूँ, आपको पा लिया काबू माशाल्लाह, नहीं नहीं चुप करो, कलमा पढ़ लिया, ये नफ्स थोड़ा सा दबा, अब थोड़ा सा आगे गए तो दूसरा तागूत शुरू होता है जो बैरूनी तागूत है, जिसमें घर वाले, दोस्त, साथी, अहबाब, मुआशरा, खानदान, ये सारे के सारे ऐसे आ जाते हैं हक लेने के, बस अल्लाह की पनाह, शायद हम सब कुछ इनका ही लेके दुनिया में जी रहे थे। लोग नहीं चाहते कि हम रब वाले बने, ये बात अपने लिए भी लिख लें और मेरे लिए भी लिख लें। लोगों को हम उस वक्त जहर लगते हैं जब हम सिर्फ रब के बनते हैं। और आपको पता है कि ये काम लोग हकूकुल इबाद के नाम पे करवाते हैं। अच्छा जी आप अल्लाह वाली बन रही हो, मेरे हक छोड़ रही हो, होता पता क्या? आप इस बात को आज समझे, और खास तौर पे हमारे मशरकी कल्चर की औरत, हम लोगों को अल्लाह के भी कुछ हकूक दे चुके होते हैं। यानी शोहर को शोहर के हकूक तो देने ही थे ना, हमने थोड़े से अल्लाह के भी दे दिए, सास, माँ, खानदान, दोस्त, साथी, अल्लाह के हक भी बंदों को ही दे देते हैं। तुम खुश हो लो, अल्लाह की खैर है, तुम्हें राजी कर दूं, नमाजें बाद में होगी। अब होता क्या, जब हम किताब से जुड़ते हैं, शऊर का सफर शुरू होता है ना, तो बस हम एक काम कर रहे होते हैं लोगों से, जो अल्लाह वाले हक उनको हमने दे दिए बचे ना, बस वो वापस लेते हैं, उनके हम कैसे वापस नहीं देंगे, उनको तो इस्लाम खुद कहता है हकूक दो। हम जब उनसे अल्लाह के हक वापस लेते हैं ना, तो लोग नाराज होते हैं। ये है वो जंग जिसको कोल्ड वॉर कहते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि फमई यूमिन बिल्ला से पहले फमई यकफुर बिताहूत, पहले तागूतों को मारो, ला की तलवार से सारे तागूत जिबा करो, दिल के बछड़े, बाहर के बछड़े, खानदान के, बिरादरी के, फिर वो यूमिन बिल्ला, फिर अल्लाह पे ईमान लाओ। अगर आप साथ साथ चल रहे हैं ना, तो इन दो लफ्जों फमई यकफुर बिताहूत व यूमिन बिल्ला ही के आगे नीचे लिखिए ला इलाह इल्लल्लाह। आज आपको इस आयत की रोशनी में ये अच्छी तरह समझ आ जाएगा। हमारा कलमा ये नहीं है कि इलाहुनल्लाह। इस्लाम की बुनियाद निगेशन पे है। इनकार से हम इस्लाम को शुरू करें। ला, पहले नो बोलो, ला बोलो, फिर इलाह बोलो। ये भी तो हो सकता था ना, इलाहुनल्लाह। नहीं, ये है वो रुकावट जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आज इस्लाम की तरफ नहीं आए हुए, क्योंकि वो ये नहीं कर पाते फमई यकफुर बिताहूत, ताहूतों का इनकार नहीं हो सकता। तो जब इंसान अल्लाह की बात ना माने तो भी वो तुग्यानी कर रहा है, सरकशी कर रहा है। अल्लाह की बात भी कर माने, किसी और की भी माने, तो भी वो सरकश है। अल्लाह को ना माने तो काफिर हो गया, और जो खुद को खुदा कह दे वो तागूत बन जाता है। नतीजा क्या होता है कि एक वक्त ऐसा आता है कि हमारा अपना नफ्स खुदा बन जाता है। फरमाया, अगर इन सारी रुकावटों से निकले हो तो फकद इस्तमसक बिल उरवतिल, फिर इसने ऐसा मजबूत सहारा थाम लिया है कि लन फिसाम लहा, जो कभी टूटने वाला नहीं। कभी काश मैंने और आपने इसकी लज्जत को चखा हो, जब बंदा सारे बैरूनी सहारों से कट के एक रब का सहारा पकड़ता है, फिर उसको पता कि वाकई अल्लाह ही है जो मेरी मदद कर सकता है। और याद रखे, हर इंसान की जिंदगी में एक आधा मौका जरूर आता है। सब जिन पे उम्मीदें थी वो पत्ते हवा देने लगते हैं, आप बिल्कुल तनहा रह जाते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं मुसीबत तनहा नहीं आती, वो इसलिए आती है एक के बाद दूसरी कि अल्लाह आपको सबसे काटता है। हमें बड़े दोस्तों पे आस होती है, बड़ी मेरी मदद करेंगे, वो अल्लाह आपको ऐसी मुश्किल में डालता है कोई उस वक्त आपको नहीं याद मिलता। फिर आप समझते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह है क्या, कि अल्लाह तू उस वक्त मेरी मदद करता है जब कोई नहीं करता, तू वहां पहुंच सकता है जहां कोई नहीं पहुंच सकता। तो यहां आप देखिए, उरवतुल वुस्का से मुराद फिर अल्लाह का सहारा है, मजबूत कड़ा। आप सोचिए ना, कोई डूब रहा था तो वो हैंडल उसके हाथ में आ गया। ये इस्लाम के अहकाम आते हैं, और मैं समझती हूँ कि आजकल हमारी ये किताब, हमारा ये उरवतुल वुस्का बनी हुई है। जब एक दफा अल्लाह की मार्फत हो जाए तो इस्लाम के अहकाम बड़े आसान लगते हैं, फिर नहीं बंदा नीचे जाता, फिर उसको सबसे ज्यादा लज्जत इसमें आती है कि अल्लाह की बात माने। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह ताला खूब सुनने और जानने वाला है। जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदगी, रब का बन के जो मजा आएगा किसी और चीज में हमें उसको मजा नहीं आएगा। कितना खुश करते हैं रिश्तेदारों को, हो भी जाते हैं बस तब तक जबकि अगला उनका मुतालबा अपना माने, फिर देखिए क्या होता है। अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाहु वलीयुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों का हामी और मददगार है। आओ तो सही, एक दफा मुझे आजमाओ तो सही, बहुत सारों से तुमने दोस्तियां की हैं ना, आओ अब मेरे साथ करो, मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनियों में ले जाऊंगा। युख्रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं क्या अल्लाह मुझे और आपको अंधेरों से निकाल के रोशनियों पे नहीं ला रहा। जुहल के, कुफर के, बेदीनी के, बेइल्मी के अंधेरों से, ख्वाहिशात के अंधेरों से जिंदगी इस्लाम की रोशनी में आ रही है, कुरान की रोशनी में, और दिल का सुकून कितना है। जबकि वल्लज़ीना कफरू औलियाहुमुत ताहूत, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया इनके दोस्त तो ताहूत हैं। ऑपोजिट छोड़ें जरा इस कड़े को, मैं कहती इस कुरान के कड़े को छोड़ के तो देखिए कितने जरासीम हमें लिपट जाते हैं, हमारा ये वक्त वो खा जाएंगे। कोई आपको जॉब ऑफर कर देगा, और कोई आपको बाजार की ऑफर कर देगा, और कोई दावतों में ले जाएगा, लेकिन याद रखो युख्रिजूनहुम मिनन नूरि इलज़ुलुमात, वो आपकी जिंदगी का नूर ले जाएंगे, आपको अंधेरों में डाल देंगे, डिप्रेशन के अंधेरे, ट्रैंक्लाइजर्स, पैनिक अटैक, यही नसीब है। याद रखिए कि ईमान एक रोशनी है, असल नूर जो है ना ईमान का नूर होता है। अल्लाह सुबहान तआला ईमान को मोमिन के दिल में डाल देते हैं। बिल्कुल आप एक बिग बल्ब को सामने रख के अपने ये बातें सोच लें। फितरत के एतबार से ईमान का नूर बंदे को चमकाता है, इसके ऑपोजिट कुफर तारीकी अंधेरा। आप देखेंगे कुरान में जहां भी लफ्ज नूर आएगा ना वाहिद आएगा, और अंधेरे आएंगे तो जुलुमात जमा में आएंगे। सच्ची मोहब्बत एक ही रब की मोहब्बत है, और उसके मुकाबले में 70 किस्म की बातिल मोहब्बत है। जब हमारे अंदर ईमान आता है ना तो हमारा पूरा वजूद मुनव्वर हो जाता है, इंसान की रूह चमकती है साफ शफाफ। इंशाल्लाह सूरत नूर में जिंदगी रही तो पहुंचेंगे जब, तो वहां देखेंगे आप कि अल्लाह नूर उस समावाती वाला, कि अल्लाह तो जमीन और आसमान का नूर है, और ये नूर कहाँ समाता है? ईमान वाले के सीने में समाता है। पूरी दुनिया में अल्लाह ने अगर अपने नूर को महफूज करने की कोई जगह रखी है तो एक मोमिन का दिल है, नूरानी दिल, चमकता हुआ कैंडल लाइट की तरह ग्लॉसी, इस तरह उसमें से छन छन के रोशनी आती है, खुद भी मुनव्वर होता है, दूसरों को भी मुनव्वर करता है। शक दूर, रोशनी में शक भी दूर, दीन के सारे शक निकल जाते हैं, शुबे दूर, कदूरतें दूर, हसद खत्म, गीबत खत्म, और आपको बस एक रब से मुलाकात की मोहब्बत के दो आलम से करती है बेगाना दिल को। फिर इस तरह आपकी जिंदगी में सुकून आता है। आप कहते हैं जब मैं अंदर से खुश हूं तो मुझे बाहर के गद्दे की क्या जरूरत है, मैं इस पर ही ठीक हूँ। फिर आप हर वक्त अपने आप को बहलाने के लिए ये चीजें नहीं जमा कर रहे कि ये कमर का और ये सर का और ये टांग का और ये, और उसके बावजूद फिर दुखी हैं कि अभी और भी थेरेपीज करानी है। आज इंसानियत यकीन करें इस नूर को पाने के लिए दुनिया की स्टोरों पे भाग रही है, लेकिन ये यहाँ नहीं मिलता। ये नूर मिलता है तो अल्लाह की किताब से मिलता है। इस रोशनी में जब जिंदगी गुजारते हैं ना तो हर चीज क्लियर, बिल्कुल आप सोचें एक टार्च है, पूरी दुनिया अंधेरा है, कुफर है, जहालत है, आपके हाथ में कुरान की नूर की ईमान की रोशनी है। आप चलते हैं, आपको रास्ता ठीक दिख रहा है, आप खुश हैं। लोग कहते हैं बहुत डिप्रेशन है, आप कहते हैं किधर, मेरे पास तो इतनी लाइट है। लोग कहते हैं परेशानी है, आप कहते हैं कोई परेशानी नहीं। लोग कहते हैं पूरी नहीं पड़ती, आप कहते हैं बहुत कुछ है, क्योंकि आपके हाथ में एक टॉर्च आ गई है, रोशनी की टॉर्च है। फिर ख्वाहिशात के अंधेरे भी खत्म, शहवात के भी खत्म, हक के रास्ते से भटकने के खत्म, तकबर गया, तुग्यानी, सरकशी, फिर आप एक जोड़ा दे के मर नहीं जाते। आप कहते हैं इससे पहले भी तो कितने जोड़े पसंद आए थे, नहीं मिलता तो ना सही, क्या करना है। और याद रखिए मिड लाइट जो होती है ना चीजों को बड़ा खूबसूरत करके दिखाती है, ग्लैमरस। कभी शादी हॉल्स में देखे बड़ी लाइट लाइट सी लाइट है, और अगर बड़े बड़े बल्ब लगा दें तो हर एक के ऐब दिख रहे होंगे, फिर अच्छा नहीं लगेगा। इस्लाम बंदे को पूरा रोशन कर देता है ना तो दुनिया का वनीर उतर जाता है। कहते हैं अच्छा ये जो गोल्डन लग रही थी, गोल्डन कोई नहीं, ये देखो कागज लगाया हुआ इन्होंने, दुनिया का विनीर उतर जाता है, और अंदर से एक खूबसूरती अपने अंदर से आती है। और इसके बरक्स लोग कहते हैं बस लाइटें डिम कर दो, डिम लाइट डिनर और फलाना डिनर और फलां कर लो। अल्लाह कहते हैं ये दुनिया में अंधेरों में ले जाने वाले तुम्हें जहन्नुम के अंधेरों में ले जाएंगे, उलाइक असहाबुन्नार हुम फीहा खालिदून। जहन्नुम पता है अंधेरी है, स्या। हदीस में आता है कि 3,000 साल तक जहन्नुम जलाएगी। पहले 1,000 साल के बाद फरिश्ते ने आके खबर दी कि अल्लाह ताला वो सुर्ख हो गई है, यानी जिस तरह आप कहें कि आग उसमें तप रही है, कौर जलाओ। फिर दोबारा लेकर आए फरिश्ते 1,000 साल के बाद खबर, कहा सफेद हो गई है, स्मोकी, धुआं भर गया, कहा अभी भी नहीं, और जलाओ। फिर 3,000 साल के बाद कहा कि अब इतनी काली है जहन्नुम हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे आता। कहा अब ठीक है, सरकशों का ये ठिकाना है, मलाइका असहाबुन्नार, अंधेरों में भटकेंगे वहां लोग। कोई बहुत खूबसूरत मंजर नहीं होगा कि आग सेक रहे हैं, अंदर सांप भी और बिच्छू भी और अंधेरे भी हैं, और हुम फीहा खालिदून, हमेशा उसमें रहने वाले हैं। सूरह यूनुस आयत 32 में आता है, फमा ज़ाद अल-हक़ की इल्ल दलाल। ये बताओ कि हक को छोड़ दोगे तो गुमराही के सिवा और क्या रह जाएगा जिंदगी में? एक सीधा रास्ता आप जान के छोड़ें तो सारा रास्ता आपको मंजिल से दूरी ले जाएंगे ना। तो इसलिए इंसान हम सबको खुश रहने का राह सिखाता है, जबरदस्ती कोई नहीं है किसी को बुलाने में ना आने में, लेकिन जो आता है वो अपने शौक से आए और जो जाता है वो अपने शौक से जाए। जितना ज्यादा आप इस किताब के साथ और अल्लाह के साथ जुड़ते जाएंगे आपकी जिंदगी मुतमईन, पुरसकून, खूबसूरत। अब यहाँ पे टॉपिक पूरा हो गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, बात इतनी ही थी आज। एक रास्ता अल्लाह का है और एक नफ्स का, शैतान का, तागूत का। जो अल्लाह का रास्ता चुनेगा ना, शुरू में जिंदगी थोड़ी सी हिलजुल भली होगी, लेकिन उसके अंदर इतना सुकून होगा, इतना कि वो कहेगा हु केयर्स। देखिए ना मिसाल देती हूँ, मैंने बड़े बूढ़ों को देखा है, सर्दियों में कोई शादी आ जाती है ना तो बहुएं बेटियां वो पतले पतले कपड़े भी पहन के फिर रही होती हैं, जिसमें बाजू भी दिख रहे हैं, क्या जी के ये शादी के कपड़े ऐसे ही बने हुए हैं। तो बड़े बूढ़े जो होते हैं ना वो कहते नहीं मैंने तो इन्हीं कपड़ों में जाना है, मुझे यही अच्छे लग रहे हैं, मैं देखो मैं इतनी नरम हूँ, मुझे इतना कड़ावा जोड़ा दे दिया, उनको कंफर्ट मिल रहा है ना। इस उम्र में आके बाज दफा इंसान फिर इन चीज़ों से बेनियाज होता है। अब होता वही है कि वो दुबले पतले कपड़ों में सी थ्रू में गई और कमर में दर्द और हवा लगा के आ गई, तो वो बूढ़ी नानी दादी अव्वल तो जाती नहीं, वो कहती हम अपने घर में ही ठीक है, हम यहीं बैठ के दुआएं दे देंगे। जो असल जिंदगी का कंफर्ट है ना, वो ये पंप एंड शो ग्लैमर में नहीं है। आपको शौक है, आपको कहते हैं कि लंदन का कौन सा सबसे बड़ा मॉल है, वहां सब चले, कितने शौक में हम जाएंगे यहाँ से बसें भर के, यकीन करें वहां आपके मिजाज की चीज ना हो या आपके पैसे ना हो, दोनों में से एक काम करें, वापसी पे आप यूं टांगे पकड़ के आएंगे, हाय थक गए हाय थक गए। और यहाँ आपको कभी थकन का एहसास नहीं होगा, वक्त की कमी का एहसास तो रहेगा चाहे आप 4 बजे तक क्लास कर दे, ये कभी नहीं, क्योंकि इसमें सुकून मिलता है। ये एक ऐसा खूबसूरत रास्ता है कि जिसको एक इंसान जब लेता है ना, तो फिर उसके बाद उसको किसी की बातों की परवाह नहीं रहती। इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आगे 3 वाक्यात हैं।
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
अभी तक जितनी भी आयात हुई इन सब का चंद लफ्ज़ों में अगर खुलासा करें तो अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद का तज़किरा किया। आयतुल कुर्सी हमने पढ़ी जिसमें अल्लाह सुबहाना ताला के बारे में हमें इतना कुछ पता चला कि जिसके बाद हकीकत में इंसान अल्लाह ताला को सिर्फ एक मावराई वजूद ही नहीं समझता बल्कि उसके बारे में उसका एक तसव्वुर भी बन जाता है। और इसमें अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल हय्युल क़य्यूम के बारे में मुफस्सरीन की अक्सरियत की राय यह है कि इसमें इस्मे आज़म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात से हमें 3 आयतें जिसमें एक आयतुल कुर्सी और दूसरी आयत सूरत आले इमरान की इब्तदाई आयात और सूरत तौहा की एक आयत जिसमें वानतिल वजूह जिसमें चेहरे झुक जाएंगे लिल हय्युल क़य्यूम का तस्कर आता है। तो जब इन 3 आयतों को जमा करें तो जो कॉमन वर्ड्स बनते हैं वो अल हय और अल क़य्यूम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी हमें किताबों में मिलता है कि जब आपके ऊपर कोई मामला बड़ा सख्त हो जाता था तो आप या हय्यू या क़य्यूम बिरहमती का इस्तगीस पढ़ते थे। तो बहरहाल ये हम सब के लिए भी है कि जब हकीकी तौर पे कहीं फंसे हों तो उस वक़्त अल्लाह ताला ही को पुकारेंगे। दूसरी चीज़ जो आयतुल कुर्सी के नाते से जिक्र करना थोड़ा सा ज़रूरी था और वो ये था कि आप अल्लाह ताला के ये नाम अगर शऊर के साथ नहीं पढ़ेंगे तो क्या फिर भी इसका फ़ायदा होगा? तो आप देखिए कि फ़ायदे में कमी हो सकती है लेकिन फ़ायदा होगा। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आप कोई दवा खाते हैं, आपको पता है कि इसका फ़ायदा है या आपको पता नहीं कि इसका क्या फ़ायदा है, लेकिन दवा का एक अपना असर तो दिल में आता ही है। यही वजह है कि शैतान इसको नहीं सुन पाता और इधर से भागने लगता है। फिर इसके बाद अगली चीज़ ये है कि एक बात हमने जो सीखी थी कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर हम इसको पढ़ लें तो उस इंसान के और जन्नत के बीच में मौत के सिवा कुछ नहीं, तो फिर क्या ज़रूरत है नेकियां करने की? ये वो सोच है जिसने एक बहुत अरसा बचपन में मुझे बहुत सारी नेकियों से दूर रखा कि भाई कोई बात नहीं, नमाज के बाद आयतुल कुर्सी तो पढ़ती हो ना तो मरते ही जन्नत। लेकिन यहाँ हम सब अब बड़े हो गए हैं, मैं भी बड़ी हो गई, आप सब भी, तो यह जहन में रखिएगा कि ये जितने भी बेनिफिट्स हमें कुरान और हदीस की रोशनी में मिलते हैं ये किसके लिए होते हैं? जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और उसके तकाजे निभाए। फिर तो हर बंदा वजीफों के तौर पे ये पढ़ता जाए और चोरियां भी करे डाके भी करे, ठीक है। इसी से मैं हदीस सुनी कि अल्लाह के नबी की सिफारिश उसके लिए है जिसने इखलास से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। तो आप कहते लो क्या बड़ी बात है, हम एक या 10 दफा कह देते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर ये लूप होल्स तो नहीं ढूंढने ना। मेरा और आपका काम क्या है कि हम अपने अमल की तरफ नजर डालें और अल्लाह ताला के ऊपर डाल दें, और अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदों को शर्मिंदा नहीं करता, रुसवा नहीं करता। दूसरी चीज़ जो अभी के हिस्से में हमारे गुजरी वो क्या है, لا اکراہ فی الدین، اس کو سمجھ لیجئے، یہ بہت اہم مقام ہے. اور یہ بھی کہہ دوں کہ یہ آیت قرآن پاک کی بہت زیادہ مس انڈرسٹوڈ آیت ہے، اور بہت سارے لوگ اس آیت کو غلط فہمی بنا کر پیش کرتے ہیں. آپ ان کو نماز پڑھنے کو کہیں، وہ کہیں گے لا اکراہ فی الدین. آپ اپنے بچوں سے کہیں بیٹا نماز پڑھو، وہ کہیں گے آپ ہمیں کیوں مجبور کرتی ہیں، وہ کیونکہ قرآن میں لا اکراہ فی الدین ہے. اور میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو کہ بالکل قرآن نہیں پڑھتے، ان کو بھی یہ آیت پتہ ہوتی ہے. تو آئیے تھوڑا سا اس کو سمجھیں. پہلی بات یہ کہ یہ آیت جو نا، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. لکھ لیں، دس ورس از ناٹ فار دا مسلمس. یہ آیت نان مسلمس کے لیے ہے. اسلام کا مزاج کیا ہے کہ کسی کو بھی اسلام میں لانے میں زبردستی نہیں کی گئی، لیکن جب کوئی اسلام میں آ گیا تو کیا کہا، ادخلوا فی السلم کافہ. پورے قرآن پہ عمل کرنا ہے نا، صرف ایک آیت پہ عمل نہیں کرنا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں آپ کو بڑی سمپل سی ایزی ٹو انڈرسٹینڈ اگزامپل دے دیتی ہوں کہ میں اور آپ آج لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کسی نے مجبور کیا کہ ہم آئے؟ کیا گورنمنٹ نے ہمیں کہا کہ تم اگر یہاں نہ آئے تو یہ ہوگا وہ ہوگا؟ ہم سب اپنے شعور اور اپنے ارادے سے آئے نا. اب آنا، یہاں آنا یا نہ آنا، یہ ہماری چوائس تھی. اب ہم آ گئے، تو کیا اب یہاں آنے کے بعد یہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز مانیں گے؟ مانیں گے نا، بس یہی بات ہے. تم اسلام میں آتے ہو، آؤ. تم اسلام میں نہیں آتے، شوق سے نہ ہو، لیکن ایک دفعہ تم اسلام میں آ گئے تو پھر تمہاری مرضی ختم. بلکہ اسلام تو نام ہی اپنی مرضی کے ختم ہونے کا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی بات یہ کہ کسی کو مسلمان کرنے میں زبردستی نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر صحابہ کرام اور اس کے بعد کے دور میں تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کبھی کسی کو زبردستی بائے ہک اور بائے کروک کے نام پہ مسلمان نہیں کیا گیا. پہلی بات ہے. لیکن جب کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے پھر پابندیاں بھی لگیں گی، بالکل اسی طرح جیسے ہم خود اپنی زبانوں سے ان ملکوں کے رولز کی بڑی تعریف کرتے ہیں جو ویسٹرن کنٹریز کہلاتے ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھو وہاں لائنیں بندی ہیں، وہاں ٹائم کی پابندی ہے. تو افسوس کی بات ہے کہ ایسے ہی پڑھے لکھے لوگ جو ویسٹ کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن جب ان کو اسلام کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں یہ بہت زیادہ زیادتی کی بات ہے. ہاں، اسلام کے اندر آنے میں کوئی جبر نہیں، مگر جو آ گیا اس کو اصول اور ضوابط ماننے پڑیں گے. اور دیکھیے کہ قانونی جبر تو کوئی نہیں ہے عمل کرنے پر بھی، لیکن فطری جبر ہے. ہم سب کی روح فطرت کے مطابق چاہتی ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کو مانیں اور اس کی طرف چل کے جائیں. ایک استثنائی صورت ہے، اونلی ایک ایسی صورت ہوتی ہے جس میں جبر کے ساتھ بھی اسلام یا تو قبول کرایا جائے گا یا پھر اس بندے کو مہلت دے کے وہاں سے جانے کی دعوت دی جائے گی. اور وہ کون سے لوگ تھے؟ مشرکین مکہ. سمجھ لیجئے گا، پچھلے دور کے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو لے لیں تو وہ ہمارے لیے زیادہ ایزی ہے. جب کسی قوم کے پاس نبی بذات خود آ جائے، اپنی آنکھوں سے وہ نبی کو دیکھ لیں، میسج پہنچ جائے، پھر اگر وہ قوم اسلام قبول نہ کرے تو پھر ان کو مجبور کیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکہ میں صبر کیا، تکلیفیں سہی، پھر اس کے بعد مدینہ میں آ گئے، پھر ان کے ساتھ جہاد کے دروازے کھل گئے. سب ادھر ادھر سے کرتے کراتے بالآخر سن 8 ہجری کو مکہ فتح ہو گیا. جس دن مکہ فتح ہوا اس سے پہلے تک ہر بندے کو پورے طور پہ آزادی تھی، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا. حتیٰ کہ جو معاہدے ہوتے تھے اس میں اجازت تھی کہ کوئی مسلمانوں سے ملنا چاہے یا کافروں سے مل جائے. ٹھیک ہے، ہو گیا ختم. مکہ فتح ہو گیا، یعنی گویا کہ مکہ پہ مسلمانوں کا قبضہ ہوا. بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں سنگ کوشچن تھا کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کچھ تو اسلام کے اس غلبے کو دیکھ کر ہی مسلمان ہو گئے کہ بس یہ سچا مذہب ہے، تبھی تو ہر ایک اس کو لینے لگ گیا. اپنے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ پیئر پریشر میں آ گئے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسریبا، آج کے دن بھی تم پہ کوئی پکڑ نہیں، جو بھی مسلمان ہوتا ہے ہو جائے، جو نہیں ہوتا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ فتح مکہ کے بعد لوگوں کے اوپر زور اتنا پڑا اسلام کا کہ خود ہی شوق سے آنے لگے. آپ سورت اگر نصر پڑھتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری دن جب آپ نے حجت الوداع کیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، خود ہی لوگ آنے لگ گئے. لیکن یاد رکھیے کہ سن 8 ہجری کے بعد پہلا سال سن 9 ہجری کا آیا، حج کا جب آیا موقع، تو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا. سورۃ توبہ کی بالکل ابتدائی آیتوں کا میں اپنے لفظوں میں آپ کو شان نزول بتا رہی ہوں. اور اس سال پہلی دفعہ فار دی فرسٹ ٹائم حرم میں اس بات کا اعلان کر دیا گیا تھا کہ اب جو بھی مشرک ہے ان کو 4 مہینے کی مہلت ملے گی, اونلی 4 منتھ. بیٹھو سنو, حتی یسمع کلام اللہ, آؤ بیٹھو قرآن سنو, صحابہ کی مجلسوں میں بیٹھو, یہ 4 مہینے تمہارے لیے سوچ کا ٹائم ہے, تھنکنگ پیریڈ ہے. اس کے بعد یا تو پھر تم اسلام میں آ جاؤ یا پھر تمہیں مکہ اور مدینہ کی حدود سے نکال دیا جائے گا. تو سن 9 ہجری کے بعد, اور اس میں بھی اتنی چوائسیز ملی کہ بالآخر مارا ان کو بھی نہیں گیا, لیکن یہ کہ مکہ اور مدینہ کی جو حدود ہے اس میں سے ان کو نکال دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو نعمت بڑی دیتا ہے تو یاد رکھیے پھر پکڑ بھی بڑی ہوتی ہے. میں جب یہ آیت سوچ رہی تھی تو میں نے کہا دیکھیے ہم بہت خواہش کرتے ہیں نا کہ ہم نبی کے دور میں ہوتے ہیں, کتنا لوگ روتے ہیں ہائے کبھی اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھتے ہیں, شکر کریں ہم نہیں ہیں. اگر نبی ہمارے سامنے ہوتے تو ہم پہ لائبلٹی زیادہ تھی. یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے ایک علم ہم گھر بیٹھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی مرضی کا, اور ایک ہوتا ہے ہم کسی استاد کے ساتھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. زمین آسمان کا فرق ہے, دو مختلف پرسنالٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں دونوں طرح کے علوم سے. تو جتنی بڑی نعمت اتنی بڑی پکڑ ہے. اب کیا ہوا, لوگ مسلمان نہیں ہوتے, نہ ہو گئے, ہو گئے, ختم بات. اب اس پہ مزید ڈیپتھ پہ ہم نہیں جائیں گے, لیکن اب ہم نے جو بات کی تھی کہ طاغوت کی بات, جس کے اوپر اب اگلی آیتوں کو ہم دیکھیں گے کہ طاغوت کیا ہے, کہ سب سے پہلے تو بندے کا اپنا نفسی طاغوت بن جاتا ہے, سب سے مشکل اس کو منانا ہے, یہی ہر وقت روٹا رہتا ہے, مجھے نہیں اٹھنا, مجھے نہیں کھانا, مجھے یہ نہیں پہننا, مجھے وہ نہیں پہننا. تو جب بندہ ان ساروں سے نکلتے ہوئے بالآخر معاشرے میں اللہ کا بندہ بن کے جینا چاہتا ہے تو لوگ آگے آتے ہیں. انبیاء کرام جن کے اوپر یہ پورے کا پورے پارے کا تھیم ہے تلک الرسل, ان سب کو اللہ سبحانہ تعالی ایمان اور یقین کی وہ فرنس, وہ بھٹی بنانا چاہتا تھا کہ جن سے ایمان پھوٹے. لیکن یاد رکھیے کہ انبیاء کرام بھی انسان تھے, مختلف ادوار میں نبیوں کے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ سوالات ابھرے, اور کسی بھی ذہن میں کسی سوال کا اٹھ جانا کوئی بری بات نہیں ہوتی. اب اگر اس سوال کو انٹرٹین نہ کیا جاتا تو الحمدللہ انہوں نے اس کو اتنی اہمیت نہیں دینی تھی, لیکن چونکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ ہدایت کے منصب پہ فائز ہوتے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نبیوں کے دل میں اگر شک کا طاغوت آ گیا, کہیں ان کو تھوڑا سا ڈاؤٹ آ گیا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں یا مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ, تو بہتر ہے کہ اس کو دور کر لیا جائے. 3 واقعات ہیں غالباً کہ جن کے اندر ہمیں نبیوں کے وہ طاغوت جو اندر سے ابھرے کسی کے باہر تھے, نبیوں نے ان سے کیسے ٹیکل کیا. اس میں سب سے پہلا واقعہ جب ہم آیت نمبر 258 میں پڑھنے والے ہیں, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ ہے. پہلے سمجھ لیجیے میرے سے تاکہ جب آیت پڑھیں گے تو بالکل آپ کے سامنے ہر چیز کھلتی جائے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے یہ بابل میں پیدا ہوئے تھے, اور نام کا ایک شہر تھا وہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی تھی. اس دور میں بابل, جس کو آج آپ عراق کہہ لیں, یعنی بابل شہر ہے, عراق سٹی ہے, نمرود اس دور کے بادشاہوں کا لقب تھا. ذہن میں رکھیے کہ نمرود کسی شخص کا نام نہیں ہے, ہر دور کا نمرود اسی طرح فرق تھا جیسے فرعون لفظ فرق ہوتا ہے, یہ ایسے جیسے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر تھا. تو مصر کے بادشاہوں کا نام لقب فرعون ہوتا تھا, جس کی جمع فرائن آتی ہے, اور نمرود جس کی جمع نماردہ آتی ہے, یہ عراق کے بادشاہوں کا لقب تھا. اب ہوا کیا کہ حضرت ابراہیم جب ار میں پیدا ہوئے تو نمرود وہاں کا بادشاہ تھا. جس طرح مصر میں فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا, اسی طرح نمرود نے عراق میں خدائی کا دعویٰ کیا. یہ بڑے بڑے خدا تھے, یہ طاغوت ہے, طغیان. اللہ تعالیٰ ان کی عملی طاغوتوں سے نبٹنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں. اصل میں نمرود کا یہ جو دعویٰ تھا نا, یہ سیاسی بنیاد کا دعویٰ تھا, اقتدار لینا چاہتا تھا, چاہتا تھا کہ جو قانون میں بنا دوں وہی چلے, جس کو غلط کہہ دوں غلط ہو, جس کو ٹھیک کہہ دیں ٹھیک کہہ دیں. گویا کہ حلال اور حرام کا اختیار ایسے بادشاہ یا ایسے حکمران اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں, اور لوگوں کے مقدر کے ساتھ وہ کھیلنا لگ جاتے ہیں. نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے اللہ کے قوانین سے مخالف قوانین اپنے ملکوں میں بنائے. آج کے دور میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی ایسی حکومت جہاں غیر اسلامی قوانین پرموٹ کیے جائیں تو آپ اس کو بھی طاغوت کہیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا, وہ کیا تھا کب تھا, یہ ذرا آیت کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ, کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا, الذی کے نیچے لکھ لیجئے نمرود, جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے. جھگڑے سے مراد جہاں ڈائیلاگ یا ڈسکشن کہہ لیجئے, ڈیبیٹ کی ابراہیم سے کی. اچھا دیکھیے, حاج ابراہیم ہے نا, تو جھگڑنے کا عمل کس سے ہوا, ابراہیم سے ہوا. اگر اس کو ہم پڑھتے حاج ابراہیم تو معنی کیا بن جانا تھا, ابراہیم نے جھگڑا کیا فی ربی ہی, اپنے رب کے بارے میں. اس شخص نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا, کیوں بھائی, اتنی جرت اس کو کہاں سے آ گئی. اللہ کہتے ہیں آتاہ اللہ الملک, اس لیے کہ اللہ نے اس کو بادشاہی جو دی تھی. یہاں سے پہلی بات تو نوٹ کیجئے کہ جس کو تھوڑی سی اتھارٹی مل جاتی ہے اس کو لڑنا آ جاتا ہے. جو رب کھانے کو دیتا ہے بندہ اسی کے مخالف ہو کے بڑی بڑی باتیں کرنے لگ جاتا ہے اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے. جھگڑا اس کا کیا تھا, وہ کہتا تھا کہ میں رب ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کی دعوت دیتے تھے, اور آگے جا کے آپ کو انشاءاللہ تفصیلات لکھاؤں گی, اس قوم کی پڑھی لکھی قوم تھی اور ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ کیا. نمرود نے کہا میں خدا ہوں, اور حضرت ابراہیم کا خیال گمان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ. ہوا کیا, اس قال ابراہیم, جب کہا ابراہیم نے ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. یعنی ان کا اصول دیکھیے, قانون دیکھیے کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے, کیونکہ وہ الحی اور القیوم ہے. نمرود نے کہا یہ کون سا مشکل ہے, قال انا احیی و امیت, کہا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور میں بھی مار سکتا ہوں. اور روایات میں آتا ہے کہ قیدیوں میں سے ایک شخص جس کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی, اس نے اس کو بلایا اور کہا جاؤ تم آزاد ہو, اور دربار میں بیٹھے ایک بے گناہ شخص کو پکڑا اور جلادوں سے کہا اس کو مار دو. کہا دیکھو میں نہیں مالک, جس کو مروا دیا, جس کو قتل کر دیا, جس کو زندہ چھوڑا. یعنی اب آپ دیکھیے کہ یہ کیسا جھگڑا کھڑا کرنے کا موقع تھا. حضرت ابراہیم بحث کر سکتے تھے نا کہ بھائی یہ کون سی بات ہے, یہ تو تم نے ایک ظلم کیا, لیکن ابراہیم نے کہا اٹس اوکے لیٹ اٹ گو. یہاں سے آپ کو تبلیغ کا بڑا خوبصورت انداز مل رہا ہے کہ فریق مخالف جب آپ کو بحث میں الجھانا چاہے تو بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے, بلکہ بات پلٹ دیں, کہا چلو چھوڑو تم نہیں مانتے نا, نہ مانو ایک اور مثال دے دی. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق, ابراہیم علیہ السلام نے کہا پس اللہ تعالیٰ لاتا ہے سورج کو مشرق سے, فاتی بھی من المغربی, پس تو اس کو مغرب سے لیا. دیٹس اٹ. فبہت الذی کفر, تو حکا بکا رہ گیا وہ شخص, یعنی لاجواب ہو گیا, بات نہ کر سکا. یاد رکھیے کہ نمرود یہ دعویٰ کرتا تھا یا اپنے بارے میں لوگوں کو اس بات پہ مجبور کرتا تھا کہ یہ سورج دیوتا کا اوتار ہے. جیسے فرعون کے بارے میں آپ کو لکھایا تھا نا, را کے بارے میں, کہ مصری سورج کی پوجا کرتے تھے, اسی طرح پیگن کلچر آپس میں ملتے جلتے ہیں. نمرود کا دعویٰ کیا تھا کہ سورج جو ہے میرا دوست ہے اور میں ہی اس کی ایک روپ میں زمین پہ ہوں. تو حضرت ابراہیم نے پھر وہی کہا کہ دیکھو سورج تمہارا دوست ہے نا, تو اس کو ذرا کہہ دو کہ ایک دن مشرق کی بجائے مغرب سے آ جاؤ. اب یہ ایسی مثال تھی کہ فبوہت الذی کفر, یہ شخص نمرود حیران رہ گیا. اچھا حیران رہا لیکن واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو, ہدایت نہیں ملی. کیوں؟ اندر اپنی بڑائی کا خیال تھا. یاد رکھیے کہ ہدایت کی چھوٹی سی چنگاری اس کے دماغ میں آئی تھی, اس کو عقل نے جھکایا تھا, لیکن چونکہ اپنے بڑے ہونے کا گمان تھا, دوسرے کو کچھ نہ سمجھنے کی بات تھی, اس لیے اس کو سمجھ نہیں آئی. آگے ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھی یہ باتیں بتائیں لیکن انہوں نے ان باتوں کو مان لیا اور اللہ کی طرف آ گئے, لیکن یہ نہ آ سکا اور اس طرح اس کو ہدایت نہ ملی. اب آپ دیکھیے کہ اس واقعے میں ہم سب کے لیے بہت سارے سبق ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ طاغوت جب باہر کا ہو, حکمران, کوئی غیر اسلامی کلچر, ایسا ہمارے ارد گرد کا ماحول کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور کر دے, تو اس کے ساتھ لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے. दूसरी बात, इसे क्या पता चलती है कि उलझने की बजाय अगले को उलझा दो। चिढ़ना नहीं चाहिए, गुस्से में मुक्के मारने, माइक पे आके हाथ मारना, चीखना चिंघाड़ना, ये नहीं चाहिए। देखिए, गुस्सा किसको आता है, झुंझलाता कौन है, जिसके पास इल्म नहीं होता। सीधी सी बात है, अपने ऊपर लेके देख ले। आपका बच्चा आपको एक सवाल पूछे आसान सा, मैथ का आप बता देंगी, दूसरा पूछे जरा मुश्किल है, आप चूचा करेंगी, तीसरा पूछे आपको नहीं आएगा तो आप परेशान होगी, फिर अक्सर माए गुस्से में चलो जाओ सो जाओ, शाम हो गई। क्यों? क्योंकि मुझे सवाल नहीं आते, मुझे तंग ना करो। कल मुझे किसी ने एक बच्ची की बड़ी प्यारी बात सुनाई, नई नई स्कूल जाने लगी है, तो अपनी फुफो को कहना कि फुफो मेरी टीचर को कुछ भी नहीं आता। तो उसने कहा कि क्यों नहीं आता, कहती सब कुछ मुझसे पूछती हैं। तो बाज दफा फिर जब बंदे का ये हाल हो जाए तो गुस्सा आता है ना, तो गुस्सा किसको नहीं आता। आप आके कोई सवाल पूछें, अगर मुझे उसका जवाब आता है तो मैं तो खुश होंगी कि मैं आपको अपना जवाब जो मुझे आता है मैं आपको बताऊं, और अगर मुझे नहीं आता तो मैं चिढ़ जाऊंगी, गुस्से में आ जाऊंगी कि आपको क्या जरूरत है पूछने की, आप बड़े बड़े सवाल करते हैं और आपको सिखा जो दिया और अब ये है वो है। तो तबलीग में ठंडा मिजाज, नरमी, सुकून, इत्मीनान, अगले को गौर फिक्र का दावत दे। बस जब हम खुद चीख रहे होते हैं, हमारे मुंह से झाग निकल रही होती है और अगला बंदा और ज्यादा परेशान होता है। फिर आप देखिए कि दूसरी चीज इस हिस्से में हमें पता चलती है, नमरूद की कम अकली, कैसा भोंडा उसने जवाब दिया कि एक बंदे को मरवा दिया और दूसरे को कहा जाओ इसको चले जाओ, और समझने लगा कि मैं जिंदगी और मौत का मालिक हूं। इसके बावजूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसके साथ कोई बहस नहीं की। तो गोया कि इसमें हम सब के लिए जो अमल है वो क्या है कि जब कभी ऐसे माहौल में इंसान का वास्ता पड़े कि जो अल्लाह कभी इनकार करे, तो उनको कायनात की मिसालें देनी चाहिए, किताब की नहीं देनी चाहिए। आप ऐसे गुस्से में उसके हाथ में किताब पकड़ाएंगे, वो हो सकता है फेंक दे, उसकी बेइज्जती कर दे, उस किताब को खराब कर दे। बल्कि इस तरह का काम करना चाहिए कि जिसको वो मान ना सके। और ये है वो इंटेलेक्चुअल स्टाइल जिसकी आज के दौर में मुसलमानों को जरूरत है। पहले दौर में, जब आज से समझे कि 50 साल या एक सदी पीछे, जलाल के साथ और गुस्से के साथ डिबेट्स हुई नॉन मुस्लिम्स के साथ, हमारे बहुत ईमान से भरे हुए और बहुत अल्लाह से मोहब्बत करने वाले दीनदार हजरात का जब नॉन मुस्लिम के साथ मुकाबला हुआ, तो चंद लोगों ने गुस्सा खा के उनको दीन से दूर कर दिया। लेकिन आज के दौर में आप पढ़ के देखिए, कोई जाके ऑनलाइन पे सर्च करके देखे, माशाल्लाह इतने खूबसूरत तरीकों से दावा की जा रही है। मुझे कल रात को एक बुक देखने का इत्तेफाक हुआ, बहुत ही खूबसूरत बुक, और मैं खुश हुई कि ये बुक बहुत, इंशाल्लाह हम लोग भी अपने इधर के लिए मंगाएंगे, कि जो सिर्फ अपने नेबर्स के लिए एक बुक छपवा के उन्होंने कि अपने नेबर्स को दें, और उसमें पूरी पिक्चर्स हैं, जब खोले एक खूबसूरत पिक्चर और उसमें एक छोटा सा मैसेज है टू माई नेबर, फिर उसमें कोई मैसेज है, फिर नीचे एक छोटा सा जैसे बुलेट पॉइंट है। तो वो छपी हुई भी इतनी खूबसूरत और इतनी को, तो बंदा शौक शौक में ही देख लेता है, और उन्होंने सोच से छपवाई है कि हम हर जगह देंगे और हम मुस्लिम्स अपने नेबर्स को दें। ऐसी चीज़ तो कोई शौक से ले लेता है, अभी क्रिसमस आ रहा है तो वहाँ भी हम लोग अपने नेबर्स को गिफ्ट में वो बुक्स दे सकते हैं। तो हमेशा देखें अगला इंसान है, आप ऊंची चीखेंगे गुस्सा करेंगे तो अगले को भी गुस्सा करना आता है। तो हमेशा अपनी बात में नरमी रखनी चाहिए, तरीके से बात करें। दूसरी चीज़ ये कि नमरूद की ये बहस और कट हुज्जती नबी सल्लम के जरिए सुनाकर बता दिया कि जिसके दिल में हठधर्मी होगी, सरकशी होगी, उसके अंदर फबूहित अल्लज़ी, हैरान हो जाता है वो अल्लाह के दीन की बात सुन के, लेकिन मानने की तौफीक क्यों नहीं मिलती, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। जबकि इसके ऑपोजिट अंबिया कराम का दूसरा मामला होता है। तो ये एक सिंपल सा वाक्या था।
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين